आज है 7 सितंबर दिन बुधवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। भारत प्रशासित कश्मीर के दौरे के बाद दिल्ली में बैठक करेगा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल।
कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स अनाउंस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। पेलेट गन्स को बंद करिए, परिवार में जो मौत हुई है उनके लिए रिहैबिलिटेशन।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक सरकार तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने के लिए तैयार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की यूपी के रुद्रपुर में खाट पंचायत।
कांग्रेस गरीबों दास है तो कांग्रेस अपनी जमीन तलाश करने के लिए जमीन पे उतर आई है।
बाबा साहब अम्बेडकर के कथित अपमान के खिलाफ बीजेपी का यूपी में राज्य भर में प्रदर्शन। ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा के लिए आज फिर से सर्वदलीय बैठक होगी। इससे पहले मंगलवार को कश्मीर से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें कश्मीर के हालात से अवगत कराया। भारत प्रशासित कश्मीर में 2 महीने पहले हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की सुरक्षा बलों के साथ कथित मुठभेड़ में मौत के बाद से तनाव व्याप्त है। सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में राहत कर्मियों का कहना है कि सेना के हेलीकॉप्टरों से रसायन हमला किया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक क्लोरीन गैस के बैरल बम गिराए जाने के बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हुई हैं। हालांकि राष्ट्रपति असद की सरकार रसायन हमले करने से इनकार करती रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले लोगों को सुरक्षित सेक्स करने या 6 महीने तक सेक्स से दूर रहने की सलाह दी है। मच्छरों के जरिए फैलने वाले इस वायरस के सेक्स के दौरान संक्रमित होने के सबूत भी मिले हैं। टोरंटो जनरल अस्पताल में संक्रमण रोग विशेषज्ञ इजाग बोगोज कहते हैं, बहुत हद तक जीका वायरस मुख्यतः मच्छरों से संक्रमित होता है और असली लड़ाई मच्छरों को काटने से रोकना और उनकी संख्या नियंत्रित करना ही है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि लोग सेक्स करते हैं और ये संक्रमण सेक्स से भी फैल सकता है। यहाँ असली चिंता गर्भवती महिलाएं हैं और ये सुनिश्चित करना है कि जो महिलाएं गर्भवती होना चाह रही हैं वो गर्भवती ना हों। ब्रिटेन की संसदीय समिति की रिपोर्ट के मसौदे में कहा गया है कि जब तक यमन के गृहयुद्ध में सऊदी अरब की भूमिका की जांच पूरी हो तब तक ब्रिटेन सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री रोक दे। सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब गठबंधन यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले कर रहा है। हमलों में नागरिकों की मौतों के लिए सऊदी सेना पर सवाल उठते रहे हैं। पिछले महीने एमएसएफ के एक अस्पताल पर भी बमबारी हुई थी। फ्रांस के द्वीप कॉर्सिका की एक अदालत ने महिलाओं के बुर्किनी पहनने पर लगाए गए स्थानीय प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। पिछले महीने फ्रांस की शीर्ष प्रशासनिक अदालत ने कहा था कि कई शहरों में बुर्किनी पर लगाया गया प्रतिबंध असंवैधानिक है, लेकिन कोर्सिका के जज का कहना है कि यहां लागू प्रतिबंध विधिसंगत है क्योंकि बुर्किनी से सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो रही है। बुर्किनी बीच पर जाने वाली मुस्लिम महिलाओं का पहनावा है जिससे शरीर ढका रहता है। अमेरिका की सेना का कहना है कि उसने यमन में किए हवाई हमलों में अलकायदा के 13 लड़ाके मारे गए हैं। अमरीकी केंद्रीय कमांड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 24 अगस्त और 4 सितंबर के बीच यमन के मध्य इलाकों में 3 बड़े हवाई हमले किए गए। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी बुरहान वानी की मौत के बाद फैली अशांति को दूर करने के लिए घाटी गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की आज राजधानी दिल्ली में बैठक होगी। ये बैठक गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। इससे पहले राजनाथ सिंह ने प्रतिनिधिमंडल के 2 दिवसीय कश्मीर दौरे के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। आज होने वाली बैठक के बारे में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव का कहना था,
इन सारे तमाम विषयों पर फिर से एक ऑल पार्टी मीटिंग जो होने वाला है उसमें समीक्षा करने के बाद सरकार अपने जो भी पक्ष रखना है रखेगी आपके सामने, अभी इस पे और ज्यादा कुछ कहना नहीं।
ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल 20 पार्टियों के 26 सांसदों ने राज्य के अलग अलग पक्षों से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन अलगाववादी नेताओं ने इस प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। आपको याद होगा कि इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल 5 सदस्य हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर तक भी गए, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इन्हीं सदस्यों में शामिल थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी। हमारे सहयोगी मोहनलाल शर्मा ने उनसे बात की।
लग नहीं रहा जनाब हमें कि सरकार का रुझान जो है वो मीटिंग में ही पता चलेगा अभी कि किस तरीके से वो करना चाहती है। जहां तक हमारा कहना है कि अगर इस समस्या से निपटना है तो सरकार को दो तरीके के काम करने की जरूरत है।
वो किस किस तरह के?
एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अनाउंस करिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर 5 मुद्दे होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि पैलेट गन्स को बंद करिए। दूसरी बात यह है कि जो भी घायल हुए हैं, जिसके भी परिवार में जो मौत हुई है उनके लिए रिहैबिलिटेशन, और जो घायल है उनके लिए मेडिकल अटेंशन और रीसेटलमेंट, सरकार कुछ योजनाबद्ध कुछ काम करे। तीसरा, जहाँ तक जो एक्सेसेस जो हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में के तरफ से, उसके लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी हो और जो भी गुनहगार साबित होता है उनके ऊपर कार्रवाई हो। चौथा, ये आफ्सपा जो हमारी स्पेशल आर्म फोर्सेज पाबंदी है उसको आप सिविलियन एरिया से तो हटाइए। पांचवा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है उनको लागू करवाइएगा। दूसरी ओर से वार्तालाप शुरू करिए, अनकंडीशनल पॉलिटिकल डायलॉग आप सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इंडिया के अंदर, और साथ ही साथ इंडो पाक डायलॉग जो यही सरकार ने जो ऐलान किया था शुरू करवाया था जो अब बंद हो गई, अब उसको चालू करवाइए।
आप डायलॉग की बात कर रहे हैं येचुरी साहब, आप डी राजा अलगाववादी जो नेता है उनके घर गए थे बात करने के लिए गए थे, तो उन्होंने दरवाजे नहीं खोले, ऐसी स्थितियों में कैसे ये बात होगी?
देखिए 5 में से 4 तो दरवाजे खोले, 4 लोगों के साथ तो बातचीत हुई, एक नहीं खोला दरवाजा। लेकिन हम हैं इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो गए, सवाल सरकार का है ना, हुकूमत उनको
तो हुकूमत नहीं तो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बना के भेजा है ना?
जी बिल्कुल, लेकिन उनमें से हम एक हिस्से के रूप में हम गए, हुकूमत को ना इतराज था ना उनकी अनुमति थी, लेकिन हुकूमत बुलाए उनको, अगर तब वो नहीं आते डायलॉग के लिए तब बात अलग होगी, तब हम सोचेंगे।
लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तो कहा था कि भाई सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, आइए बात कीजिए, वो नहीं आए, इससे ज्यादा गृह मंत्री और क्या करेगा?
आमंत्रण आपने दिया कई सारे लोगों को, आमंत्रण उनको क्यों नहीं दिया गया? वही आमंत्रण जो हमको दिया गया, सबको दिया गया कि हुकूमत से बात करें, वही आमंत्रण उनके लिए क्यों नहीं दिया गया?
तो आज ये जो मीटिंग होनी है सर्वदलीय, आपको कुछ उम्मीद दिखती है?
अब देखिए सरकार के रुझान पर डिपेंड करता है, हमने तो ये हमारे पास जो आप बताइए अभी तक हम कहेंगे कि ये काम करिए।
बैठक में विपक्षी पार्टियां रखेंगी अपनी राय, ये थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इस बेरुखी को लोकतंत्र, मानवता और कश्मीरियत के खिलाफ बताया था। कश्मीर में जारी हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कई घायल हैं। सरकार का कहना है कि वह राज्य में शांति बहाल करने के लिए कदम उठा रही है। हमारे सहयोगी मोहनलाल शर्मा ने वरिष्ठ पत्रकार बशीर मंजर से बात की और पूछा कि सरकार कश्मीर समस्या को लेकर कितनी गंभीर दिखती है।
देखिए अगर आप पहले दिन ले लें, जब से ये एजिटेशन यहाँ चल रहा है 2 महीने हो गए, आप पहले 1-1.5 महीना तो सरकार जरा भी सीरियसनेस नहीं दिखी न्यू दिल्ली से कोई भी, लेकिन अब ऑफ लेट लग रहा है कि सरकार ने इस इशू को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद यहाँ के अपोजिशन से मीट की, उसमें कश्मीर के हवाले से कुछ बातें की, फिर वो जो रेडियो पे टॉक उनका आता है मन की बात, उसमें कश्मीर के हवाले से बात की, और उसके बाद ऑल पार्टीज डेलीगेशन जिसमें 20 के करीब पार्टीज थी के नुमाइंदे थे, उनको कश्मीर भेजा ताकि यहाँ स्टेक होल्डर से बात की जाए। लगता है कहीं ना कहीं सीरियसनेस आ रही है दिल्ली के एटीट्यूड में।
मान लिया जाए कि सरकार इस बार गंभीर नजर आ रही है, लेकिन इसमें कोई नतीजा जैसी कोई उम्मीद की भी जा सकती है या फिर वही होगा?
देखिए जो अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस को देखें, जो कुछ पहले हुआ है 2008 की एजिटेशन, 2010 की एजिटेशन, उस वक्त भी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आए, वो उन्होंने भी रिपोर्ट्स दे दी उस वक्त की गवर्नमेंट्स को, उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं हुआ। गंभीरता देखी जाएगी कि जो आज हो रही है प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ, वो उनको ब्रीफ करेंगे कि उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, उसके बाद अगर कुछ फॉलो अप होता है तो हम कह सकते हैं कि गंभीरता है। अगर ये पिछली मीटिंगों की तरह जिस तरह 2010 में हुआ था कि मीटिंग हो गई कोई फॉलो अप नहीं है, तो मेरे ख्याल में इश्यूज रिजॉल्व होने का कोई चांस नहीं बन सकता है।
अलगाववादियों का जो रवैया था, दरवाजे न खोलना, सीताराम येचुरी वहां पर पहुंचे थे, दरवाजे न खोलना, ये तो बहुत एक ऐसा संदेश है कि जो अलगाववादी गुट हैं वो तो सरकार से बात करना ही नहीं चाहते।
देखिए इस मुद्दे को लेके आजकल कल से कश्मीर में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या अलगाववादियों को वाकई ऐसा एटीट्यूड दिखाना चाहिए था या नहीं। एक वजह तो यह है कि जो पिछली बार का तजुर्बा था 2010 का, उस वक्त भी एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया था, वो सारे उलगावादी लीडर्स से मिला था, लेकिन उसके बाद फॉलो अप कुछ नहीं हुआ था। वो एक बिटर एक्सपीरियंस था इन लीडर्स का, शायद उसकी वजह से वो मिल नहीं पाए। लेकिन साथ ही साथ जो एक सवाल उठता है वो ये है कि अगर आप मिलते नहीं है लोगों से तो मुद्दा कैसे रिजॉल्व होगा, इशू कैसे रिजॉल्व होगा। तो ये एक डिबेट चल रहा है कश्मीर में कि जब तक आप मिलेंगे नहीं कोई मसाइल हल नहीं होने वाले।
बातचीत से ही होगा मसाइल का हल, ये थे वरिष्ठ पत्रकार बशीर मंजर।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़ व मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
कर्नाटक सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए वो कावेरी का पानी छोड़ने के लिए तैयार है। राज्य में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि सरकार गंभीर संकट के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ देगी। इस फैसले के विरोध में कावेरी बेसिन क्षेत्रों मांड्या और मैसूर में प्रदर्शन होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच कल प्रदर्शनों के कारण कर्नाटक का बेहद अहम बेंगलुरु मैसूर हाईवे बाधित रहा। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की ये रिपोर्ट।
कर्नाटका में कावेरी विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कावेरी बेसिन क्षेत्रों मंड्या और मैसूरू में प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है। वही इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मंड्या जिले के किसानों ने बेंगलुरु मैसूरू हाईवे को बंद कर दिया था और उन्होंने वैकल्पिक रास्तों पर भी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कर्नाटका तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक पानी हर रोज छोड़ें। इस मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक में कर्नाटका सरकार ने यह फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जाएगी। हालांकि राज्य में किसान और विपक्ष इस फैसले के खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा,
डिस्पाइट सीवियर हार्डशिप फेसिंग बाय कर्नाटका स्टेट विल रिलीज।
कर्नाटका के सामने मौजूदा गंभीर संकट के बावजूद कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पानी छोड़ेगा, क्योंकि हम संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार है और हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करना मुश्किल है। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की समीक्षा करने और तुरंत छोड़ने जाने वाले पानी की मात्रा की समीक्षा करने की अपील करेंगे। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। हालांकि इस सर्वदलीय बैठक का जनता दल सेक्युलर ने बहिष्कार किया, उधर बीजेपी का एतराज था कि कर्नाटका तमिलनाडु को पानी ना छोड़े। विधानसभा में विपक्षी दलों के नेता जगदीश शेट्टर ने कहा,
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗೂ ಸಹಿತ ನೀರಿಲ್ಲದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ।
हमारा मानना है कि सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएं और फिर से पुनर्समीक्षा की अपील करें, लेकिन हमारे दलील को सरकार नहीं मान रही है और पानी रिहा करने का फैसला ले लिया है। ये थे जगदीश शेट्टर के शब्द। इसके जवाब में सिद्धरामैया ने बीजेपी निर्णय को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि 2012 में जब उनकी सरकार थी तो विपक्षी दलों को बताए बिना बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दे ही दिया था। लेकिन इस मसले पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा, अगर कर्नाटका इस आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट का कहना है कि मॉनिटरिंग कमेटी जिम्मेदारी लेगी और पानी रिहा करेगी। दरअसल मामला ये है, कर्नाटका अपना पानी तमिलनाडु को देने के बाद या तो अपने किसान को पानी दे सकती है या बेंगलुरु और मैसूरु शहरों के निवासियों को पीने का पानी दे सकती है। ये थे देवेगौड़ा के शब्द। कावेरी जल के मुद्दे पर ही कर्नाटका सरकार के ट्राइब्यूनल के निर्णय के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस याचिका पर अगले महीने सुनवाई होगी। इस बीच कर्नाटका सरकार को ये कानूनी सलाह दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर चलें। प्रदर्शनों की आशंका के चलते वहां पर 9,300 पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात किए गए हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज बाबा साहब अम्बेडकर के कथित अपमान के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी ने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर की गई टिप्पणी पर अचानक ये फैसला किया। पार्टी राज्यव्यापी प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को इस बारे में एक ज्ञापन भी देगी। पूरी जानकारी के साथ समीर आत्मज मिश्र।
भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले बेटी के सम्मान में और अब बाबा साहब के सम्मान में मैदान में उतरने का फैसला किया है। पार्टी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आजम खान की बाबा साहब अम्बेडकर पर की गई एक टिप्पणी को लेकर सख्त नाराज है और आज उसने इसके विरोध में राज्यव्यापी प्रदर्शन करने की ठान रखी है। पार्टी नेता विजय बहादुर पाठक कहते हैं,
बड़बोले बयानों के लिए आजम खान ने एक बार फिर बाबा साहब को अपने उन बयानों में निशाने पर लिया है, अपमान किया है उनका। इस अपमान के कारण भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करें। वे नहीं करते हैं तो पार्टी ने तय किया है पूरे राज्य में 7 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देगी। बाबा साहब बच्चे की परियों के लिए आजम खान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए।
दरअसल आजम खान ने दो दिन पहले गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के मौके पर बाबा साहब के बारे में कुछ इस तरह टिप्पणी की थी।
पूरे उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है, मैं वहां भी आऊंगा।
बात वैसे तो दो दिन पुरानी हो गई, लेकिन बीजेपी ने इस कथित अपमान के विरोध की जानकारी कल देर शाम मीडिया को दी। ये पूछने पर कि आजम खान की इस टिप्पणी में बीजेपी को किस बात पर आपत्ति है, विजय बहादुर पाठक कहते हैं,
किस तरह से उनके चित्र को लेकर के अभद्र टिप्पणी की है, कुल मिलाकर के वो एक अपमान हुआ है। लोग उनके प्रति श्रद्धा करते हैं और प्रसाद करने वाले व्यक्ति पर के बारे में जब इस तरह की टिप्पणियां की जाती है तो समाज अपने आप को अपमानित महसूस करता है।
वही समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की इस आपत्ति को खारिज किया है और पार्टी के विरोध को कोई खास तवज्जो नहीं दी है। पार्टी प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि ये बीजेपी की आदत है।
भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का उनका राजनीतिक चरित्र है कि वो ढोंग से ही राजनीति करते हैं और बाबा साहब को समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मानती है। डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अम्बेडकर का तो आपस में लगातार संवाद था। जमीन पर कब्जे की बात है तो बसपा के लोग ज्यादा करते रहे हैं। ये संकेत
बीजेपी ने इससे पहले पार्टी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह की बेटी के लिए आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल करने पर बीएसपी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला था। पार्टी की मांग थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत नारे लगाने वाले बीएसपी नेताओं को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और बीजेपी ने भी एक दिन के प्रदर्शन के अलावा बेटी के सम्मान में और कुछ नहीं किया। अब देखना यह है कि बाबा साहब के सम्मान में पार्टी कितना आक्रामक रुख अपनाती है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में ही कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देवरिया जिले के रुद्रपुर में खाट पंचायत की और चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी। खाट पंचायत में राहुल गांधी ने किसानों की समस्याएं सुनी और उनसे बात की। राहुल गांधी का कहना था कि उन्होंने सरकार पर दबाव डालने के लिए 2500 किलोमीटर लंबी ये यात्रा शुरू की है। इस आयोजन के बाद पंचायत में आए लोग बैठने के लिए लाई गई खाटों को लेकर चलते बने, यहाँ तक कि कुछ लोग खाट के लिए छीना झपटी करते हुए भी दिखाई दिए। हमारे सहयोगी मोहनलाल शर्मा ने बात की उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय से और पूछा कि क्या राहुल गांधी के दौरे किसी चुनावी रणनीति के तहत हैं?
इसमें कोई शक नहीं है कि ये रणनीति पूरी बनाई गई है प्रशांत किशोर द्वारा, लेकिन मैं आपसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। इसमें दो बिंदु है। देखिए, पहला ये है कि कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता नशीन रही, लेकिन सत्ता नशीन होने पे जनता से ये कट गए, इसीलिए खाट की जरूरत पड़ी है और ये अपने को जमीन में फिर अपनी जगह तलाश करने के जुगाड़ में है। दूसरी बिंदु, प्रधानमंत्री जी चाय पे चर्चा करते हैं, वो उनके एयर कंडीशन कमरे में बैठ के होती है, लेकिन चूंकि उस पद पे बैठे हुए हैं इसीलिए आवाज बहुत दूर तक पहुंचती है। आज कांग्रेस की स्थिति वो नहीं है, कांग्रेस गरीबों दास है। तो कांग्रेस अपनी जमीन तलाश करने के लिए जमीन पे उतर आई है।
और तो कांग्रेस अपनी जमीन तलाश करने के लिए जमीन पर उतर आई है, खाट का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कांग्रेस की ये रणनीति क्या आम मजदूर किसानों को या वोटों को जोड़ पाएगी?
देखिए, ये तो हम एक एस्ट्रोलॉजर की तरह भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ये अभी बड़ी लंबी यात्रा इनकी चलनी है और बार बार रिपीट होगी। और खाट का चोरी होना हमारे समाज की क्वालिटी को बताता है, न कि राहुल गांधी या कांग्रेस की राजनीति को। माफ करिएगा, ये हमारा समाज भी ऐसा है कि खाट मिला खाटी उठा के चल दो। लेकिन राजनैतिक दृष्टिकोण से जहाँ कांग्रेस जीरो थी, आज हीरो नहीं है, लेकिन उस राह पे चल पड़ी है धीरे धीरे।
जहाँ तक उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें, तमाम सर्वे इस दौरान आए जिसमें कि अलग अलग चैनलों ने वो सर्वे कराए, जिसमें कि मुख्यमंत्री की दौड़ में अखिलेश यादव को सबसे आगे बताया जा रहा है। उसमें सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई कैंडिडेट है तो वो उत्तर प्रदेश की जो महिला मुख्यमंत्री प्रत्याशी है वो शीला दीक्षित नजर आती है। इन समीकरणों को किस तरह से देखते हैं?
जो ओपिनियन पोल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इतिहास गवाह है कि वो लखनऊ से लंदन, लंदन से वाशिंगटन तक फेल हुए हैं, एक बार नहीं अनेकों बार। दे आर पास्ट मास्टर्स इन मिसजजिंग पीपल्स पल्स। तो हम सिफोलॉजिस्ट की बात नहीं करते हैं, लेकिन शुद्ध राजनैतिक तरीके से इस तरह आप किसी पार्टी को, आज की उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, आप किसी पत्रकार से, किसी कॉमन आदमी से बात करिए लखनऊ में, और लोग यही कह रहे हैं कि आज की डेट में मायावती नंबर वन है। वो समीकरण क्या है? सीधा सीधा दलित प्लस मुस्लिम। तो अगर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनता है तो मैं समझता हूँ मायावती आज की डेट में नंबर वन है। रही कांग्रेस की पोजिशन, कांग्रेस की पोजिशन नंबर फोर्थ पे है, आज की डेट में है। अब कितना इम्प्रूव करता है नहीं करता है ये तो सिर्फ समय बताएगा। लेकिन साथ साथ एक बात और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की भी पोजीशन नंबर तीन से ऊपर आज की डेट में नहीं है। ये हवा पानी बनाने से सिर्फ काम नहीं चलता है ना, समाज का कोई भी महत्वपूर्ण एक वर्ग आज उनके साथ भी नहीं है।
वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय से बात कर रहे थे मोहनलाल शर्मा। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। दिलनवाज पाशा पूरे अखबार फैला के बैठे हैं स्टूडियो में, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी सुशीला, आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर एक तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी की सभा में खाट की लूट दिख रही है। लोग चारपाइयां ले लेके भाग रहे हैं और अलग अलग अखबारों ने इस पे अलग अलग सुर्खी लगाई है। दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक खास खबर का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें 60 साल के एक किसान ने तेंदुए से लड़ाई में तेंदुए को हटा दिया और ऐसा करने के लिए उन्होंने तेंदुए के जबड़े में हाथ डालकर उसकी जीप पकड़ ली। हालांकि किसान लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा उनको। एक खबर नवभारत टाइम्स में पहले पन्ने पर है जिसमें कहा गया है कि बच्चों पर जो बस्ते का बोझ है बहुत भारी पड़ रहा है और इससे बच्चों में कुबड़ निकलने का खतरा है, तो ये एक चिंताजनक खबर है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक बिल्डर से कहा है कि आप मरो या डूब जाओ, लेकिन जिन निवेशकों ने आपकी इमारतों में पैसा लगाया है उनका पैसा लौटा दो। अलगाववादियों पर सख्ती के मूड में है सरकार, बंद होगी सहूलतें, ये खबर अलग अलग शीर्षकों से आज के अलग अलग अखबारों में पहले पन्ने पर है। और एक कावेरी का जो विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, उसमें सरकार ने कल रात फैसला लेते हुए पानी छोड़ने का ऐलान किया है, ये खबर अखबारों के पहले पन्ने पर है। छत्तीसगढ़ की खबर का जिक्र करना चाहूँगा जिसमें जिलाधिकारी ने व्हाट्सएप के जरिए डॉक्टरों से अपील की है कि वो आएँ और सरकारी अस्पताल में नौकरी लें। उनका कहना है कि हमने एक अच्छा अस्पताल बनाया है, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, आप आइए और हमारे इलाके में काम कीजिए।
समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए दिलनवाज पाशा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय, सीरिया के विद्रोही नियंत्रण वाले इलाके में राहत कर्मियों का आरोप है कि सरकारी हेलीकॉप्टरों ने वहां बैरल बमों के जरिए क्लोरीन गैस का हमला किया है। पूर्वी अलेप्पो में मौजूद एक कार्यकर्ता ने बीबीसी को बताया कि इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और करीब 120 लोग गैस से होने वाले प्रभावों से जूझ रहे हैं। पूरे ब्यौरे के साथ दिलनवाज पाशा।
सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में काम कर रहे राहत कर्मियों का कहना है कि सेना ने हेलीकॉप्टरों से रसायन हमला किया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 120 से ज्यादा घायल हुए हैं। अलेप्पो के सुकारी इलाके में हमले के बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना हुआ है। हालांकि इन रिपोर्टों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। इसी बीच सीरिया पर अपनी 12वीं रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि फरवरी में हुए संघर्ष विराम से कई शहरों में सालों में पहली बार मदद पहुंचाई जा सकी। हालांकि ये संघर्ष विराम कुछ सप्ताह ही टिक सका। जिनेवा में प्रेस वार्ता में बोलते हुए जांच दल के सदस्य विटीट मुंटार बॉन ने कहा,
Our report
हमारी रिपोर्ट इस बार इस तथ्य पर केंद्रित है कि फरवरी में जगी कुछ उम्मीद के बाद मार्च के अंत से भारी सैन्यकरण हुआ, जो सीरिया के लोगों और मासूमों के लिए अन्यायपूर्ण और शर्मनाक है। इसलिए ही हम फिर से वार्ता पर जोर दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में इस समय 6 लाख से ज्यादा लोग घेराबंदी में रह रहे हैं। अलेपो में लगभग 3 लाख लोग सरकारी सेना की घेराबंदी में हैं। सीरियाई सेना पर अलेपो में पहले भी रसायन हमले करने के आरोप लग चुके हैं।
सीरिया के अलेपो में रासायनिक हमला, ये थे दिलनवाज पाशा। भारतीय कुश्ती संघ ने बीजिंग ओलंपिक के कांस्य और लंदन ओलंपिक के रजत पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का नाम पद्म भूषण पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया है। इसे लेकर हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने सुशील कुमार से बातचीत की।
बस मैं यही कहूंगा कि कोई अवार्ड मिलता है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा और खेल मंत्रालय जो भी इस पर डिसीजन लेता है, मगर नाम भेजा है उसके लिए मैं फेडरेशन को भी धन्यवाद दूंगा कि राय दुरुस्त है।
और सुशील, जब हम आपसे पहले बातचीत करना चाहते थे तब पता चला कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी फिटनेस किस तरह की है और कब आपको हम दोबारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं और कौन से टूर्नामेंट की तैयारी है?
ट्रेनिंग में मैं लग गया हूँ और बहुत जल्दी आप मेरे को टूर्नामेंटों में देखेंगे। बस दुआएं आशीर्वाद चाहिए है कि जैसे देश की सेवा पहले की, जो भी हुआ पूरे देश को पता है इस चीज के बारे में, अब धीरे धीरे सामने आ रही है बात। मगर बीबीसी के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और कहूंगा कि विशेष आशीर्वाद मेरे को होते हैं कि मैं देश के लिए फिर से देश की सेवा कर सकूं।
सुशील, वैसे आपके लिए तो बहुत सारे मेडल बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबियां कौन सी मानते हैं?
आपने मैं बच्चे से देखा है, आप लोगों ने मेरे को चाहे स्कूल नेशनल में मैं खेला या मैं कोई इंटरनेशनल में वर्ल्ड चैंपियन बना या 2 ओलंपिक में मेडल आए, कोई भी एशिया चैंपियन में मेडल जीता, मगर जो भी मेडल मैं जीतता हूँ या वही मेरे लिए बड़ी कामयाबी मैं महसूस करता हूँ और अगले टारगेट पे मैं लग जाता हूँ। बस अब एक चीज मेरी बची हुई है तो उस पे बस मैं मेहनत कर रहा हूँ कि उसको अचीव करना।
वो कौन सी ऐसी अचीवमेंट है?
ओलंपिक के गोल्ड की अचीवमेंट है तो उस पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चाहे मैं 4 साल और जी जान से करूं।
आपको यहाँ तक लाने में जिस तरह से आपके गुरु सतपाल जी का योगदान रहा, यशवीर जी का, रामफल जी का, और सतपाल जी की सबसे बड़ी तमन्ना थी कि वो अपने गुरु का वो सपना पूरा करें ओलंपिक्स में मेडल, तो जब बीजिंग में आपने पदक जीता तो आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी आपकी?
बिल्कुल, मैं अपने गुरु का सपना पूरा कर पाया और मैं हमेशा इस चीज को आप लोगों के सामने भी मैंने बोला है कि मैं तो गुरु की वजह से हूँ और मैं मानता हूँ कि गुरु जी मेरे संतुष्ट भी हुए इस चीज से, फिर हमने रिपीट भी किया मेडल और वो बहुत खुश हैं इस चीज को लेके और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे जो गुरु हैं वो मेरे इन अचीवमेंटों पर।
अब आप कुश्ती में भारत का भविष्य किस तरह का देखते हैं, क्योंकि 6 साल अखाड़े ने देश को बहुत सारे ऐसे मेडल विनर दिए हैं जिन्होंने विश्व।
मैं बस आपके माध्यम से एक ही चीज कहूंगा कि जो स्थिति आज के टाइम हमारी ओलंपिक में हुई, खिलाड़ियों को आगे ला के और एक जिम्मेवारी देनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी ने 20 साल 25 साल किसी ने हमारे जो गुरु जी है उन्होंने अपने इस खेल के लिए 45 साल दिए हैं, तो मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छे से ये बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए। और आज के टाइम आप देखोगे कि 76 साल स्टेडियम में जूनियर पहलवान इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उन्हें ओलंपिक के गोल्ड को लेना ही लेना है, एशियन गेम्स के गोल्ड को लेना ही लेना है। उस तरीके से हमारे जो गुरु जी हैं उस तरीके से हमें शेड्यूल देते हैं और मेहनत कराते हैं।
हर मेडल है बड़ी कामयाबी, ये कहना है पहलवान सुशील कुमार का। उनसे बात कर रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा के लिए आज फिर से सर्वदलीय बैठक होगी। सीरिया के अलेपो शहर के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में राहत कर्मियों का कहना है कि सेना ने हेलीकॉप्टरों से रसायन हमला किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले लोगों को सुरक्षित सेक्स करने या 6 महीने तक सेक्स से दूर रहने की सलाह दी है। ब्रिटेन की संसदीय समिति की रिपोर्ट के मसौदे में कहा गया है कि जब तक यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब की भूमिका की जांच पूरी हो तब तक ब्रिटेन सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री रोक दे। फ्रांस के द्वीप कोर्सिका की एक अदालत ने महिलाओं के बुर्किनी पहनने पर लगाए गए स्थानीय प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। अमेरिका की सेना का कहना है कि उसने यमन में किए गए हवाई हमलों में अलकायदा के 13 लड़ाके मारे गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने खाड़ी देश बहरीन से विपक्षी कार्यकर्ता नबील रजाब को तुरंत रिहा करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने सोमवार को किए गए मिसाइल परीक्षणों के लिए उत्तर कोरिया की कड़ी आलोचना की है और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जिल्मा रुजैफ ने अपना आधिकारिक आवास छोड़ दिया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे विश्व भारती में दोबारा 8 बजे होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।